ओम शांति। संस्कार शुद्धिकरण की विधि, प्यारे बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं, तो पतित से पावन बनना अर्थात अपने पुराने संस्कारों का शुद्धिकरण करके आदि अनादि दिव्य संस्कारों को धारण करना, क्योंकि जो संस्कार हम संगम युग में धारण करते हैं उन संस्कारों को लेकर हम परमधाम रूपी घर वापस जाते हैं और थोड़ा विश्राम करने के बाद जब आत्मा सतयुग में धरती पर आती है तो संस्कारों के आधार पर ऐसे रॉयल परिवार में जन्म लेती हैं, क्योंकि परम धाम से जब आत्मा नीचे उतरती है तो कहां जन्म लेना है, कौन से घराने में जन्म लेना है, ये संस्कारों पर निर्भर होता है। जिनके रॉयल संस्कार नोबल संस्कार होते हैं वो स्वतः ही राजा महाराजा के घर में जन्म लेते हैं, और जिनके संस्कार साधारण होते हैं तो वो साधारण परिवार में ऑटोमेटिक जन्म लेते हैं। इसलिए घर वापस जाने के पहले हमें अपने संस्कारों का शुद्धिकरण विधि पूर्वक करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने संस्कारों का विधि पूर्वक शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो धर्मराजपुरी में हमें सजाएं भी खानी पड़ेगी और सतयुग में हमें साधारण पद की प्राप्ति होगी। इसलिए विधि पूर्वक संस्कारों का शुद्धिकरण दिव्यकरण अर्थात परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो यथार्थ विधि संस्कार परिवर्तन करने के लिए कौन सी है, कुछ विभिन्न युक्तियों को विधियों को मैं सामने रखना चाहूंगा। पहली विधि ज्वालामुखी योगाभ्यास के द्वारा संस्कारों का शुद्धिकरण करना। जब ज्वालामुखी धरती से फटती है उसमें जो लावा रस निकलता है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, उसके संपर्क में कितनी भी कठिन चीज आती है वो सेकंड में पिघल जाती है। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में जो योग की ज्वाला धधकने लगती है उसमें हमारे 63 जन्मों के कठोर संस्कार, कड़े ते कड़े संस्कार बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं और आत्मा एकदम कांचन हो जाती है। जब आत्मा कांचन होती है तो हमारे मूल संस्कार दिव्य संस्कार आत्मा में अनुभव करने लगते हैं। इसलिए अमृत वेले या नमाज शाम के समय एकांत में बैठकर या संगठन में बैठकर हमें ऐसी ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति अवश्य करनी जरूरी है। दूसरी विधि, संस्कार परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना। संस्कार आत्मा में होते हैं, संस्कार शरीर में नहीं होते हैं। ऋषि मुनियों ने शरीर को बहुत तपाया, बहुत साधना की, आसन बहुत किए, लेकिन अंत में वो किसी न किसी व्यक्ति पर मोहित हो गए। तो आवश्यकता है जो अंतर आत्मा में संस्कार होते हैं उसको परिवर्तन करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चलें। सारे दिन भर में हम ऐसा लक्ष्य रखें, आत्मा की अनुभूति के साथ साथ जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके भ्रुकुटी में चमकता हुआ स्टार देखना है। ऐसा लक्ष्य रखना है कि सारे दिन भर में कम से कम मुझे 25 या 50 व्यक्तियों को आत्मिक रूप से देखना ही है। तो जैसे जैसे यह अभ्यास बढ़ता जाएगा आत्म अभिमानी स्थिति हमारी निखरती जाएगी तो संस्कारों का शुद्धिकरण सरल होता जाएगा। तीसरी विधि है बीज रूप स्थिति का अनुभव बढ़ाते जाना। बाबा ने मुरली में कहा है बीज रूप स्थिति ये योग की बहुत ऊंची स्थिति है। बीज रूप स्थिति में अगर हम कुछ ही सेकंड की भी अनुभूति करते हैं तो उसमें हमारे बहुत पाप भस्म होते हैं। इसलिए बीज रूप स्थिति का अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। बीज रूप स्थिति का नाम बीज रूप क्यों पड़ा है? इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है आत्मा और इस कल्प वृक्ष का बीज है परमात्मा। जब हम स्वयं को बीज अर्थात आत्मा समझकर बाबा के पास बैठते हैं, एकदम निरसंकल्प होकर बैठते हैं, तो बाबा से बहुत ऊर्जा आत्मा ग्रहण करने लगती है। परिणाम स्वरूप ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति हमारी बढ़ती जाती है। ब्रह्मा बाबा हर रोज 2 बजे उठकर ऐसा शक्तिशाली अभ्यास योग का करते थे। इसलिए हमें भी हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार रात को 2 बजे या 3 बजे उठकर ऐसे बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी ऊंची स्थिति की अनुभूति अमृत वेले जितना हम जल्दी उठते हैं वातावरण का हमें बहुत सहयोग मिलता है। परिणाम स्वरूप ऐसी ऊंची स्थिति की अनुभूति हमें सहज होने लगती है। चौथी विधि, संस्कारों का शुद्धिकरण करने के लिए हमेशा नए संसार की स्मृति हमारी बुद्धि में रहे। अगर हमें लंदन जाना है तो लंदन जाने के लिए हम तैयारी करते हैं, वहां कैसा वातावरण होगा, सीजन कैसा होगा, कौन से कपड़े मुझे लेने होंगे, तो हम उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो नए संसार की स्मृति होने से सतयुग की नई दुनिया में मुझे जाना है, इसलिए ऐसे दिव्य संस्कार धारण करने की तैयारी में हम सदा जुटे रहेंगे। तो संस्कारों का शुद्धिकरण सरल होता जाएगा। इसलिए हमेशा नए संसार की स्मृति ताजी हमारे बुद्धि में रहे कि मुझे ऐसी दैवी दुनिया में जाना है। पांचवी विधि है, मस्तक पर हम एक बात लिख दें कि मैं संस्कारी आत्मा हूं। जैसे कोई अपने को क्षत्रिय समझता है तो अपने वो अस्त्र शस्त्र तैयार करने में लगा रहता है, कोई वैश्य समझता है तो उसके बुद्धि व्यापार में लगी रहती है। तो ऐसे हमें मैं संस्कारी आत्मा हूं इस स्मृति में रखने से ऐसे दिव्य संस्कार मुझे धारण करते रहना है, इस तैयारी में हम सदा लगे रहेंगे और संस्कारों का शुद्धिकरण सरल होता जाएगा। छठवीं विधि है, संस्कार शुद्धिकरण के लिए मदद करने वाली बात है स्वयं की चेकिंग और चेंजिंग करते रहें। कौन से संस्कार को मुझे परिवर्तन करना है ये कभी हमारे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं, अंदर आत्मा को झांक कर अच्छी तरह से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कौन से विकार के संबंधित कौन सा संस्कार मुझे परिवर्तन करना है। उसकी चेकिंग अच्छी तरह से उसका शुद्धिकरण करना सरल हो जाता है। इसलिए एकांत में बैठकर अच्छी तरह से स्वयं की चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन सा मुझ आत्मा पर दाग है जो मेरी वैल्यू को घटा रहा है? ऐसा कौन सा विकारों का अंश मुझ आत्मा में है जिसको मुझे परिवर्तन करना है? तो जब ऐसी बीमारी का पुराने संस्कार का पता चलता है तो हम उसी प्रसाद में लगे रहते हैं। और सातवीं बात है, हमेशा हमें क्या करना है, बाबा की छत्र छाया में जितना हो सके रहना है, क्योंकि माया के संग में रहने से हमारे संस्कार अशुद्ध हो चुके हैं, लेकिन बाबा के संग में रहने से संग का रंग लगता रहेगा, परिणाम स्वरूप संस्कारों की दिव्यता बढ़ाने में सहज होगा। इसलिए अगर सतयुग में आपके सिंहासन पर आपको बड़ी छतरी चाहिए, छोटी छतरी चाहिए या बड़ी छतरी चाहिए बताइए भाई। हाँ जी, छोटे से काम नहीं चलेगा, बड़ी छतरी चाहिए तो लंबे समय तक संगम युग में बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करना होगा। इस संगम युग की छत्र छाया की अनुभूति उस सिंहासन की छतरी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें सारे दिन भर में ऐसा अनुभव करना है कि बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा चल रही हूं, विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें और बाबा का संग अनुभव करते रहें। तो इस प्रकार से हम विभिन्न युक्तियों को जब अपनाते रहेंगे तो संस्कारों का परिवर्तन शुद्धिकरण सरल होता जाएगा। अभी हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज बाबा के घर में जाकर मुरली भी सुनते हैं, फिर भी कभी कभी जब हम व्यवहार में आते हैं तो हमें रोब आता है, फीलिंग आती है। तो हर रोज योग और ज्ञान का अभ्यास करने के बाद भी संस्कारों का परिवर्तन क्यों नहीं होता है? उसका कारण यही है, साधारण योगाभ्यास से हमारे जो कठोर संस्कार हैं वो नरम भी होते हैं, वो गर्म भी होते हैं, लेकिन मेल्ट नहीं होते हैं। जब तक वो मेल्ट नहीं होते हैं तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। सोने का शुद्धिकरण अगर हमें करना होता है तो वो अग्नि से होता है। तो ऐसे आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए योग की अग्नि ज्वालामुखी योगाभ्यास के द्वारा अनुभव करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाते रहें, उसका अभ्यास हम करते रहें। उसके लिए कुछ एक बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा और उसमें भी मुख्य 7-6 बातें हैं। उन 6-7 बातों पर अगर अभ्यास करेंगे तो गारंटी है आपके संस्कारों का शुद्धिकरण सहज रीति से होता जाएगा और आप अपने संपूर्णता के मंजिल के समीप पहुंचते जाएंगे। पहली बात, ऐसी उच्च कोटि की साधना करने के लिए हमें इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना होगा। ये दुनिया मरी पड़ी है, ये दुनिया कब्रस्तान है, ये दुनिया स्मशान घाट बनी है। तो इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव जब होता है तो ऑटोमेटिक परमात्मा से हमारा अनुराग बढ़ता है। एक तरफ से बुद्धियोग हट जाता है तो दूसरे तरफ बुद्धियोग बाबा के तरफ जुट जाता है। लेकिन जितना वैराग्य उतना ही परमात्मा से अनुराग अनुभव होता है। इसलिए अंतर आत्मा से ऐसी आवाज आती रहे कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, मैंने इस रंग मंच पर बहुत अच्छा पार्ट बजाया, अभी मुझे यहां से घर वापस जाना है। तो ऐसा अभ्यास करते हैं तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें सरल होती जाती है। ब्रह्मा बाबा को जब विनाश का साक्षात्कार हुआ तब बाबा बिल्कुल इस संसार से विरक्त हो गए। एकदम वैराग्य का झरना बाबा के दिल में सदा बहता रहता था। तो हमें भी वैराग्य की अनुभूति करते रहना जरूरी है। रहना इस संसार में है लेकिन कमल पुष्प समान हमें रहना है। दूसरी बात, ऐसी उच्च कोटि की साधना करने के लिए बहुत पहली बात है गहराई की आत्म अनुभूति और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात स्वयं में खो जाना। कहते हैं जब तक खुद में और खुदा में नहीं खो जाना होता है तब तक कोई भी खजाना हमें नहीं मिलता है। खजाना अर्थात बहुत सुंदर दिव्य अनुभूतियों का खजाना तब हमें अनुभव होता है जब हम खुद में और खुदा में खो जाते हैं। तो गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात एकदम आत्म अनुभूति में हम डूब जाएं। जैसा हम आत्मा में डूब जाते हैं तो ये शरीर रूपी वस्त्र का भान हमें भूलने लगता है। जैसे मैं आत्मा इस धरती पर बिंदु के रूप में आई थी, ऐसी अनुभूति हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाती है। इसलिए एकांत में बैठकर आत्मा की अनुभूति को गहराई से बढ़ाते जाना है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। संपूर्ण आत्म अभिमानी अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो। जब बाबा के पास आए तो 100% देह का भान था, 0 आत्मा का भान था। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करने लगे तो अभी आत्मा के भान का पलड़ा बढ़ते जाना जरूरी है। 100% आत्मा का भान और 0% देह का भान इस मंजिल के समीप अनुभव करते जाना जरूरी है। हम बाबा मुरली में कहते हैं, आत्मा नंगी आई थी और नंगी जाएगी। नंगे शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? ना अंगे अर्थात ये अंग के बिना आत्मा आई धरती पर और इस अंग को प्रकृति ने हमें प्रदान किया पाड़ बजाने के लिए। तो इस अंग को हमें भुला देना है और बहुत अच्छी तरह से विदेही स्थिति अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात इस संदर्भ में बताई है, जितना जो निरहंकारी बनते हैं उतना वो निराकारी स्थिति का सरलता से अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा भी रिंचक मात्र भी अभिमान होता है, मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, मैं सुंदर हूं, जो भी, तो अभिमान जब देह का भान का होता है तो आत्मा का अनुभव करने में बाधा डालता है। इसलिए जितना निराकारी निरंकारी बनते हैं उतना निर्विकारी स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है। तीसरी बात, इसी में शक्तिशाली आत्मा के भान में ही शक्तिशाली अनुभूति कैसे बढ़ाएं? जब हमें ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करनी होती है, उस समय बाबा के पास जब हम बैठते हैं उस समय हमारे मन की बैठक शक्तिशाली होना जरूरी है। बाबा सर्वशक्तिवान हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा मास्टर ज्ञान श्री हैं तो मैं आत्मा भी मास्टर ज्ञान श्री हूं। ऐसे पावरफुल भान में हमें स्थित रहना है। अगर स्वयं को साधारण रीति से अनुभव करेंगे तो आपको साधारण ही करंट मिलेगा और ऐसी ज्वालामुखी योग की अनुभूति नहीं होगी। साधारण योग की होगी जरूर, लेकिन बाबा ने हमें इशारा दिया है सिद्धांत में कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। ऐसे जब भी हम बाबा के पास बैठते हैं तो शक्तिशाली आत्म अनुभूति में ही बैठें। अब तीसरी बात है, ज्वालामुखी योगाभ्यास करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति करना अर्थात परम धाम में बाबा के पास बहुत समीप जाकर बाबा के स्वरूप को देखें और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें। बाबा का स्वरूप बहुत नजदीक से हम देखते हैं तो वास्तविकता की हमें अनुभूति होती है। बाबा के लिए हम गाते आए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्यता का सागर है। इस संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं और सतयोग लाने वाले हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में कहते हैं सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो बाबा सत्यता के सागर हैं। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी हैं, कल्याण के वो सागर हैं। मनुष्य आत्माएं कल्याणकारी हैं, लेकिन हद के कल्याणकारी हैं। बाबा बेहद के कल्याणकारी हैं। कितना भी नजदीक का मेहमान हमारे घर में आ जाता है, हमारे पास आता है, दो चार दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते भाई आपकी टिकट कब की है। हद के कल्याणकारी बाबा जैसा मेरा कल्याण चाहने वाला इस संसार में कोई भी नहीं। तालियां तो बजाओ भाई। और हमने केवल बाबा को गालियां दी, द्वापर से केवल गालियां दी। तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो, अगर आपको कोई कहेगा आप कुत्ते में हो, कुत्ते हो आप, तो गुस्सा आएगा और हम उस पर ये करेंगे, आंखें फाड़ के देखेंगे, कुत्ता है मैं बताऊं तुमको। और द्वापर युग से हमने बाबा को गालियां दी, फिर भी रहम का सागर बाबा हम बच्चों का कल्याण करने के लिए धरती पर आए भाई आए। विकारों के गंदगी में लतपत हुए थे, कभी भी बाबा ने नहीं सोचा कि ये मेरा बच्चा इतना गंदा हो चुका है, मैं इसका कैसे कल्याण करूं, नहीं सोचा। तो बाबा कल्याण का सागर हैं। और तीसरी बात, सुंदरता के सागर हैं। जो बहुत सुंदर चीज होती है ना, दुनिया वालों ने गीत बनाया है सुंदरता पर मोहित होकर, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे में क्या देखूं, इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर हो, तेरे चेहरे से नजर ही नहीं हटती, मैं दुनिया के नजारे क्या देखूं। तो बाबा के तरफ देखे, बाबा आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, आपके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती, ये दुनिया के नजारे क्या देखूं। अरे भाई तालियां तो बजाओ। सुंदरता के सागर हो, सारे संसार को सुंदर बनाने का ठेकेदार है बाबा। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज हैं। तो सुंदरता का जो सागर है उसको हम बुद्धि रूपी नेत्र से देखते रहे। योगी माना प्रभु के पागल प्रेमी, केवल प्रेमी नहीं पागल प्रेमी, उनको भगवान के बिना कुछ दिखता ही नहीं, कुछ सोचता ही नहीं। योगी भगवान के पीछे दीवाने, और भगवान भी उनके पीछे दीवाने। जो खुद पर खुदा पर फिदा हो जाता है तो खुदा भी उन पर फिदा हो जाता है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान सबसे भाग्यवान आत्माएं कौन सी हैं? हैं जी, हम बाबा के बच्चे हैं, अभी तो लाखों बच्चे हो गए। इस संसार में सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को मिलता है उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई ऊंचा भाग्य है ही नहीं। वो कौन सा भाग्य है? योगी आत्माएं भगवान के नैनों का नूर बनते हैं, भगवान के नैनों के पलकों में सदा पलते हैं। इससे बढ़कर कोई ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है, लेकिन केवल वह सौभाग्य योगी आत्माओं को मिलता है। क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं भगवान नूर बनकर रहता है। टिट फॉर टैट ये दुनिया का नियम है, इसलिए सबसे सुंदर जो बाबा हैं, उनको अपने बुद्धि रूपी नेत्र में बैठा दे, बसा दे। लेकिन बाबा कहते हैं, मैं तो आपके नैनों में बैठ जाता हूं, बैठने के लिए तैयार हूं, मैं और बाबा मेरे तीसरे नेत्र में। बाबा कहते हैं, इस तीसरे नेत्र में अगर किसी तीसरे को बिठा दिया तो क्या होगा भाई, ये तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देगा। इसलिए मेरे तीसरे नेत्र में केवल मैं और मेरा प्यारा बाबा, तीसरा कोई नहीं। ऐसा अभ्यास जब हम बढ़ाते जाते हैं तो ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति होती है। तो बहुत समीपता से बाबा को देखें और गहराई की अनुभूति हो और शक्तिशाली स्वरूप में भी बाबा को देखें। बाबा बिंदु हैं, आत्मा भी बिंदु है, लेकिन अंतर क्या है, बाबा बिंदु है लेकिन उस बिंदु में सात सिंधु समाये हुए हैं, सात सागर समाये हुए हैं। आप सोचो कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी। हमने बाबा कहकर उसको ऑर्डिनरी बना दिया। बाबा तो हैं, लेकिन कौन सी वो हस्ती हैं? दुनिया सारा संसार उसके मुट्ठी में है, सारा संसार तीनों लोगों का कारोबार उसके इशारे पर चलता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लोगों ने तो यहां तक कह दिया है ये हरे झाड़ का पत्ता नहीं, लेकिन हम जो आत्माओं रूपी कल्पवृक्ष के पत्ते हैं, उसके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। इतनी बड़ी वो हस्ती है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, मैंने हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया है, वो केवल बजाने का काम कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी हस्ती है, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, उसने मेरे साथ देने का अंत तक वायदा किया हुआ है। कितने हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला हमारे भाग्य का गुणगान हर रोज मुरली में करता है। कितने भाग्यशाली, सोचो तो सही जरा। तो कहने का भाव है, बाबा का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप देखना है और अनुभव करना है। उसके लिए अर्जुन कहते हैं, साक्षात्कार जब भगवान का अर्जुन को हुआ था तो अर्जुन वर्णन कर रहे थे, अर्जुन कि भगवान का स्वरूप इतना तेजोमय है, इस सूर्य से हजारों गुना, ये जो दुनिया का सूर्य है उससे हजारों गुना तेजोमय है। लेकिन हजारों गुना तेजोमय तो नहीं है, लेकिन हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है। बाबा को लोगों ने सर्वव्यापी कहा है। क्यों कहा है? कुछ तो अनुभव किया होगा। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ हैं। एक ही समय हजारों स्थान पर जाने की क्षमता और हजारों आत्माओं को पालना देने की क्षमता बाबा में है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है परमात्मा सर्वशक्तिवान है, और दूसरा कारण है परमात्मा को कोई भी देह का बंधन नहीं है, इसलिए कि साथ अनगिनत स्थानों पर जाने की क्षमता और अनगिनत कार्य करने की क्षमता केवल बाबा को ही है। इसलिए हमें ऐसी शक्तिशाली अनुभूति करने के लिए ऐसा बाबा का स्वरूप परम धाम में देखना है और अनुभव करना है, तब हमें ऐसी शक्तिशाली ज्वालामुखी स्थिति की अनुभूति सहज होती जाएगी। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो। योग करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है उसके साथ हम मधुर मुलाकात करने के लिए बैठे हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के साथ मिल रहे हैं तो आपके मन और बुद्धि में खुशी और नशा होना चाहिए। जब आपका मन और बुद्धि खुशी में या नशे में झूमता रहेगा तो परमात्म मिलन में अनोखा ही मजा आपको आएगा, बहुत सुंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनुभव आपको योगाभ्यास में होंगे। अमृत वेले आप उठेंगे और बैठेंगे, चलो कोई बात नहीं अभी बैठ जाते हैं एक घंटा, बाबा ने नियम बनाया है, तो ऐसे जबरदस्ती बैठते हैं और मन और बुद्धि में इतनी खुशी नहीं है तो योगाभ्यास में इतना अनुभव नहीं भी होगा और प्राप्तियां भी नहीं होगी। लेकिन जैसे आप बैठते हैं और मन और बुद्धि झूमती है तो सुंदर और गहन अनुभव आपको योगाभ्यास में होते रहेंगे, क्योंकि योगाभ्यास में अनुभव कराने वाली ये दोनों शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, इनको हमें बहुत अच्छी तरह से उमंग के साथ, नशे के साथ, खुशी के साथ भरपूर अनुभव करना जरूरी है। उसके लिए क्या करें, उसके लिए आवश्यकता है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना। बाबा ने हमें सोमान का सिंहासन दिया है, पड़े हैं खड्डे में, खाई में पड़े थे, अब वो खाई से ऊपर उठाने के लिए बाबा ने कहा इस सोमान का हाथ पकड़ो, जैसे सोमान का हाथ पकड़ोगे तो परमात्मा का साथ अनुभव करने लगोगे। इसलिए सारे दिन भर में हमें सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करना जरूरी है। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी गहन अनुभूति करना चाहते हैं उसके लिए शर्त है सोमानधारी बनना होगा, नहीं तो आपको गहन अनुभूतियां नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से समान रहता था कि मैं नारायण बनने वाला हूं, सारे संसार में नंबर वन आत्मा नारायण बनने जा रहा हूं। हमेशा नशा रहता था, आज मैं बूढ़े शरीर में हूं, काल मैं मिचनू कन्हैया बनने वाला हूं, जिसके पीछे दुनिया पागल है वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं। ऐसे मस्ती में, ऐसे ईश्वरीय खुशकुमारी में बाबा सदा रहते थे, सोमान में रहते थे। तो ये ईश्वरीय नशा क्या काम करता है, अपने संपूर्णता के निशाने तरफ पहुंचाने का काम करता है। जितना ये नशा बढ़ता जाता है निशाने के तरफ समीप तेजी से हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बाबा ने जो हमें सिंहासन दिया है सुमान का, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं अनेक आत्माओं की दुर्गंध को मिटाने वाली दुर्गा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, जो आपको अच्छा लगता है सुमान का टाइटल, उस सुमान के टाइटल को स्वीकार करके उसको अनुभव करते जाना है। डॉक्टर कोई बचपन से, जन्म से डॉक्टर नहीं होता है, जब वो पढ़ाई पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है तो उसका चेहरा बोलता है मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, बड़े नशे से मैं डॉक्टर हूं। अरे भाई ठीक है, डॉक्टर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लौकिक नशा है, ये लौकिक नशा है, हमें अलौकिक नशे की अनुभूति करना है। आत्मा को नशे में झूमते रहना अनुभव करना है। और उसके लिए बाबा ने ये बड़े बड़े टाइटल दिए हैं, तो हमें टाइटल को दिल से स्वीकार करना है और उसकी अनुभूति करना है। कई बार इतने बड़े बड़े टाइटल स्वीकार करने के लिए हम हिचकते हैं, पता नहीं बाबा इतने बड़े टाइटल दे रहे हैं, इसके लायक तो मैं नहीं हूं, पता नहीं बाबा मेरी महिमा तो नहीं कर रहे, ऐसा संशय हमारे मन में आता है। लेकिन दुनिया में एक ही बाबा हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। मनुष्य तो झूठी मैठी महिमा भी कर सकते हैं कुछ उनको लेना होगा तो, लेकिन बाबा सदा सत्य बोलते हैं। लेकिन वो उतना ऊंचा टाइटल हम स्वीकार करने के लिए हिचकते क्यों हैं? कॉन्शियस हमें अलाउ क्यों नहीं करता है? उसका कारण है द्वापर युग से लेकर 2500 साल तक हम माया की जेल में रहे, उसके कारण आत्मा में हीन भावना कोट कोट कर भरी पड़ी है। वो हीन भावना हमें ये से श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने के लिए थोड़ा सा हिचकताती है। हमें द्वापर कलयुग को नहीं देखना है, सतयुग त्रेतायुग को देखना है। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेतायुग में राजे महाराजे बनाने के लिए मेरे पास कोई और है ही नहीं, केवल आप ही महान आत्माएं हैं, आप ही लायक आत्माएं हैं जो ऐसी ऊंची पोजीशन में मैं बिठा हूं। तो उस सिंहासन पर बैठने के लिए अभी से हमें तैयारी करना है, समान के सिंहासनधारी बनना है। सिंहासनधारी अर्थात धारण करना, जीवन का अभिन्न अंग समान के टाइटल को अनुभव करना। हम रॉयल आत्माएं, साधारण आत्माएं इस सभा में कोई भी नहीं है, बहुत रॉयल आत्माएं हैं। करोड़ों में एक एक आत्मा का सिलेक्शन भगवान ने किया है, कुछ विशेषता है इसी आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। गॉड सिलेक्शन इज अ परफेक्ट सिलेक्शन, ह्यूमन सिलेक्शन मे बी परफेक्ट मे नॉट बी परफेक्ट, लेकिन परमात्मा का सिलेक्शन 100% परफेक्ट है। उस निश्चय के साथ हमें बहुत सुंदर समान की अनुभूति करना है। और छठवीं बात है ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। परमात्म प्यार का झरना दिन प्रतिदिन बहता रहे, क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों माइलों की दूरी है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार की ताकत है, ये कराती है। तो जब हमारा प्यार बाबा के साथ प्रति बढ़ता है तो एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति होती है। कंबाइंड माना कम एंड बाइंड, बाबा से एकदम बंध जाओ, कंबाइंड हो जाओ। जब तक कंबाइंड नहीं होते हैं तब तक ऐसी शक्तिशाली अनुभूति हमें नहीं होती है। छोटा सा उदाहरण, जलता हुआ लाल कोयला मैं हाथ पर पकड़ता हूं तो फट से मेरा हाथ जलने लगता है कंबाइन होते ही, क्योंकि वो बहुत लाल गर्म कोयला है। तो ऐसे बाबा के साथ जब हम कंबाइन होते हैं तो बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ बाबा शक्तियों के सागर भी हैं। तो लवफुल याद शक्तिशाली याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती है, ट्रांसफर होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे ज्वालामुखी योगाभ्यास का अनुभव हमें होने लगता है। इसलिए दिन प्रतिदिन बाबा के प्रति प्यार हमारे दिल में बढ़ता रहे। हैं जी, आत्माओं के साथ मुझे प्यार को शेयर नहीं करना है। मेरे पास कुछ नहीं है, बेघर, ये घर भी मेरा नहीं है, एक किराए से लिया मैंने, बेघर माना बेघर, कुछ भी नहीं मेरे पास। केवल दिल के सच्चे प्यार की अमूल्य पूंजी मेरे पास है और कुछ नहीं है। सुदामा के पास केवल मुट्ठी चावल था, ऐसे मेरे पास भी दिल का सच्चा प्यार है और उसको मैंने भगवान को ही सौंपना है, किसी आत्मा के साथ शेयर नहीं करना है। ये रियलाइजेशन मेरे पास स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और हम यहां आके बैठे हैं। तो ये जब हिसाब किताब होता है उसके कारण संभावना होती है किसी के तरफ थोड़ा सा लगाव और झुकाव होने की। लेकिन इस बीमारी से हमें सदा मुक्त रहना है, उसके लिए प्यार के बारे में 5 बातें आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए। मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी व्यक्ति के तरफ आकर्षित नहीं हो सकते हैं। बुद्धि हमारी इधर उधर लटक नहीं सकती, भटक नहीं सकती, मटक नहीं सकती। 5 बातें हैं। पहली बात लिखो, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ट्रस्ट वर्दी लव है। आत्माओं का प्यार विश्वास पात्र नहीं है। द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। माया ने हमें फुटबॉल बना के 5 खिलाड़ियों ने ऐसे लताड़ा कहीं का नहीं रखा। तो केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितनी कंडीशंस, कितनी कॉम्प्लिकेशंस। जब प्यार किसी से होता है सारी लिस्ट लिख के देते, ये मेरी कंडीशन है, अगर पूरी नहीं होगी तो मुझे कोई लेना देना नहीं। अभी शादी होती है ना, चिट्ठा लिख के देती है, मेरी कंडीशन है। नहीं पूरी होती है तो सीधा कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। भाई भगवान के प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं है। भगवान कहते सच्चे दिल पर भाई ऊपर वाले साहब को राजी करना है, ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो केवल एक कंडीशन है, दिल में मुझे सच्चाई चाहिए। बस मैंने अपने दिल तख्त पर उस पर बिठा दिया, मेरे दिल तख्त पर बाबा बैठा है। बाबा कहते और कोई तीसरा बैठ जाए तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, ये ध्यान रखना। और कोई कंडीशन ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है और बेहद का प्यार है। आत्माओं का प्यार तो ये गागर है और वो गागर भी खाली है, वो भी छलक रही है। ये तो प्यार का सागर है, वो गागर वाले से क्या प्यार करे, वो खाली गागर से। तो प्यार का सागर है परमात्मा और अविनाशी प्यार है बाबा का। आत्माओं का प्यार तो विनाशी है। और तीसरी बात, निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। इस सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, जहां स्वार्थ समाप्त होता है कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। लेकिन केवल परमात्मा ही है जो जो निस्वार्थ प्यार करते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स और गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है देखो। आत्मा लेती है और भूल जाती है, परमात्मा देता है और भूल जाता है। तो प्यार के वो सागर है, निस्वार्थ प्यार करने वाले संसार में एक ही बाबा है। और चौथी बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है, शरीर भी इम्प्योर है, आत्मा भी इम्प्योर है। इनसे प्यार करेंगे तो आत्मा भी इम्प्योर बनेंगे ना भाई। परमात्मा बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्या क्यों याद करे बाबा को? हाँ भाई, प्रश्न उठता होगा कभी, हर मुरली में मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों बाबा हमारे पीछे पड़ा है? क्योंकि बाबा के कल्याण की भावना है, मेरा हर बच्चा संस्कार से शुद्ध हो जाए, एकदम दिव्य बन जाए और मेरे पास आ जाए। लेकिन बाबा को याद क्यों हमें करना है, ये हमारे पास रियलाइजेशन होना चाहिए। पहली बात है, बाबा को याद क्यों करना है? क्योंकि इस ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाला जन्म मरण से न्यारा केवल एक ही बाप है। दूसरी बात, केवल वही पतित पावन और एवर प्योर हैं। और तीसरी बात, केवल वही सोर्स है, शक्तियों का सोर्स एक ही बाबा है। आत्माएं कितनी भी शक्तिशाली हो तो भी सोर्स नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नियम है, ये सिद्धांत है। ऊर्जा जो है हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ, माना आत्मा की तरफ शक्तियां आती है। लेकिन हमारा किसी आत्मा के साथ बुद्धियोग जुड़ा है तो हमारी ऊर्जा उनके तरफ प्रवाहित होती है और हमें और शक्तियों के खर्च होता है। खर्चा मिलता नहीं है, शक्तियां मिलती नहीं है, लेकिन जो है वो भी खर्च होती है। लेकिन बाबा की याद से सोर्स होने के कारण हमें शक्तियां मिलती है। और पांचवी बात है, क्यों प्यार करना चाहिए? केवल बाबा का प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर परम धाम में ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती हैं। जितनी आत्मा पवित्र बनती है, इस अपवित्र दुनिया से ऊपर उठने लगती हैं, सूक्ष्म वतन परम धाम में बुद्धि के द्वारा निवास करने लगती हैं। तो बाबा का प्यार हमें ऐसे श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पर ले जाता है। तो ये इन पांच बातों को जब हम महसूस करते हैं तो कभी भी किसी आत्मा के साथ हम प्यार शेयर नहीं करेंगे। इसलिए ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए दिल में परमात्म प्यार का प्रतिशत बढ़ता रहे। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा बढ़ती रहे। और सातवीं बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनकर एकाग्रता का अभ्यास जरूरी है। उसके बिना ऐसी शक्तिशाली योग की अनुभूति नहीं हो सकती है। क्या होता है, हम सेवा में इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहते हैं, भागते दौड़ते हैं, अगर कोई हमें एकांत में बैठने के लिए कहता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई जबरदस्ती पकड़ के मुझे बिठा रहा है, एक बंधन सा लगता है। लेकिन जितनी रुचि विस्तार में जाने की हो उतनी रुचि सार में अर्थात एकांतवासी बनने में भी हो। इसलिए एकांतवासी बनना भी हमें प्रिय लगे, हमें खींचे, एकांत में मैं बैठूं, एकांत में मैं बैठूं। और एकांतवासी बनने के बाद एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करना है। एकाग्रता अर्थात एक आग्रहता, एक लक्ष्य पर मन बुद्धि को लगन के साथ, हट के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ बिठा देना है, बाबा पर लगा देना है। तो एकाग्रता के साथ हम योगाभ्यास करते हैं तो ऐसी योग की ज्वाला धधकने लगती है। छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। मेरे हाथ में कागज का पेपर है, धूप बहुत कड़ी है, मैं मास चल रहा है, धूप में 10 दिन से मैंने वो कागज रखा है लेकिन अभी तक भी वो नहीं जल रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने उसको जल्दी से जल्दी जलाना है। तो किसी ने मुझे गाइड किया कि मैग्नीफाइंग लेंस ले लो, धूप में बैठ जाओ, कागज के ऊपर उसको पकड़ो, पूरे एकांत के साथ में पकड़ो, वो हिलने नहीं देना है, हिलेंगे तो वो कागज नहीं जलेगा। तो उससे क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं, प्रखर किरणें, तेजस्वी किरणें उस लेंस पर पड़ती हैं, लेंस से पास होती है, तो लेजर किरणें एकदम शक्तिशाली किरणें बनती हैं। और ऐसी लेजर किरणें पूरी एकाग्रता के साथ उस कागज पर पड़ती हैं, प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, अग्नि धधकने लगती है और उसमें पेपर सेकंड में जल जाता है। तो ऐसे हमें बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में बाबा को देखना है। ज्ञान सूर्य बाबा को हम देखते हैं तो ज्ञान सूर्य से शक्तिशाली किरणें बुद्धि रूपी लेंस पर पड़ेंगी और उससे जब पास हो जाएगी तो वो बहुत ऊर्जावान शक्तिशाली लेजर किरणें बनेगी। और ऐसी ऊर्जावान किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ेगी तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, योग की ज्वाला धधकने लगेगी और उस योग की ज्वाला में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो जाएंगे और आत्मा को एकदम लाइटनेस और खुशी की अनुभूति होगी। बाबा कहते मुझे केवल याद करो, विकर्मों को भस्म करना वो मेरा काम है, आपको इसके बारे में सोचना नहीं। खुद कह रहे हैं मुझे याद करेंगे तो आपके विकर्म भस्म हो गए भाई, नहीं होंगे क्या? लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा डाउट आता है और उसके कारण योगाभ्यास में रुचि कम होती है। लेकिन 100% गारंटी है जो योगाभ्यास से हमारे विकर्म भस्म होते हैं, थोड़ा अनुभव करने की बात है। होता है ना? क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति कार चला रहा था, कार चलाते चलाते गाड़ी रुक गई रास्ते पर। वो कहने लगा भाई अभी ये गाड़ी रुक गई है, इसको कैसे चालू करें, फिर इसको गैरेज में ले जाना पड़ेगा। तो कैसे धक्का धक्का लगा के गैरेज में ले गया और मैकेनिकल को कहते भाई ये गाड़ी बंद हो गई, पता नहीं क्या हो गया। तो मैकेनिकल कहता मैं इसको ठीक कर दूंगा, पैसे लूंगा। हाँ भाई जरूर जल्दी ठीक करो, हमारे जल्दी जाना है, मैरिज सेरेमनी अटेंड करना है। तो वो बोनट खोल के उसको तैयारी करने के लिए प्रसाद कर रहा है। तो वो बीच में कहता है ये ऑयल कहां से आ गया? अरे भाई तुम ऑयल कहां से, ठहरो ना, ये पानी लीकेज कैसे हो गया? वो मैकेनिकल कहता है भाई मुझे काम करने दो, बाजू में बैठ जाओ, वो मेरा काम है गाड़ी को ठीक करना, पैसा आपका लूंगा, ठीक गाड़ी करूंगा। तो ऐसे परम धाम रूपी गैरेज में हम अपनी आत्मा रूपी गाड़ी ले जाते हैं, बाबा मैकेनिकल बाबा के हवाले कर देते हैं, बाबा एसी ऑयलिंग पेट्रोलिंग वॉशिंग क्लीनिंग करते हैं, विकर्मों को भस्म करते हैं। जो बाबा कहते एक के जन्म तक आपकी गाड़ी कभी रुकेगी नहीं भाई, ये मेरी गारंटी है, मेरे पर विश्वास तो रखो। तो हमें पूरा निश्चय के साथ बाबा को याद करना है और ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करना है। हम बाबा के बच्चों ने हर कलप ऐसा सुंदर अभ्यास हम बाबा के बच्चों ने ही किया है। क्या है भाई? सुमति है, याद है, यादगार शास्त्रों में है, याद है या नहीं है बोलो ना, आपको शास्त्रों में यादगार है उसकी। हम बाबा के बच्चों ने नहीं किया है, और किसी ने नहीं किया, हमने ही किया है। उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है, गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन को और सहपाठियों को एकाग्रता का धनुर्विद्या का ज्ञान सुनाने जा रहे थे और उनका अभ्यास भी करा रहे थे। तो उन्होंने धनुर्विद्या सिखाते रहे। एक दिन उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने एक वृक्ष की डाल पर आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख में जो काली पुतली है, जो ब्लैक आई बॉल है, उस पर आपको तीर मारना है। ये लक्ष्य दिया। फिर सहपाठी को पहले बुलाया, इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहा है, पुतली भी दिखाई दे रही, काली पुतली, हाँ वो डाल भी दिखाई दे रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई। अर्जुन इधर आओ, क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो पंछी की आंख में जो काली पुतली है वही मुझे नजर आ रही है, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा तो लो तीर मारो। तीर मारा, पास विद आनर हो गया। क्या नाम था उसका? अर्जुन। कोई अर्जुन परजुन होकर नहीं गया है, ये सारे अर्जुन यहां बैठे हैं, सारे अर्जुन यहां बैठे। तो केवल अभ्यास की बात है। तो अभ्यास चेकिंग और चेंजिंग की, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का सिंपल टेक्निक है। आत्मा समझने के बाद बुद्धि रूपी नेत्रों पर पूरी निगरानी हमें रखना है कि मेरा बुद्धि रूपी नेत्र कहीं और न जाए। अगर जाता भी है किसी व्यक्ति वैभव पर, तो वहां से उसको हटाकर बाबा को बिठाना है। चेकिंग और चेंजिंग, चेकिंग और चेंजिंग, ये जितना जितना अभ्यास हमारा बढ़ता जाता है, उतनी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। ये अभ्यास की बात है। तुम अमृत वेले नुमा शाम के समय जब हम योग में बैठते हैं, तो ऐसे पावरफुल योग की अनुभूति हमें करना ही है। इस लक्ष्य के साथ बैठना है। योग में बैठते समय अगर आप ढीले लक्ष्य से बैठेंगे, तो आपको अनुभूति हो भी होगी भी या नहीं होगी, गारंटी नहीं। लेकिन शुरुआत में ही नीचे के साथ बैठेंगे, आज मैंने ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति करना ही है, होके रहेगी। क्योंकि बाबा कहते हैं, दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता होती है जिस कार्य के लिए, उतनी सफलता उस कार्य में हमें मिलती है। क्यों होता भाई ऐसी बात? यह स्लोगन कैसा काम करता है? जितनी दृढ़ता उतनी सफलता। क्योंकि समय और संकल्प की शक्ति, जितनी दृढ़ता होती है उसके पीछे हम लगा देते हैं, जी जान लगा देते हैं उसके पीछे, समय और संकल्प के खजाने को लुटा देते हैं। परिणाम स्वरूप हमें ऐसी शक्तिशाली प्राप्तियां उपलब्धियां होती रहती हैं। इसलिए लक्ष्य हमारा बहुत दृढ़ हो, लक्ष्य हमारा टाइट हो, तभी हमें ऐसी ज्वालामुखी योगाभ्यास की अनुभूति होती रहेगी। अभी एक बात महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। इस संस्कारों का शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, इसको तेज करने के लिए और एक बात को उसके साथ ऐड करना है। ये पांच विकार जो है, ये है क्या चीज? ये पांच विकार पांच दिव्य गुणों का अभाव है। इस हॉल में अभी लाइट चली जाती है, अंधेरा आता है। अंधेरा क्या चीज है? कुछ नहीं है, लाइट का अभाव है। तो ऐसे विकार अंधकार है, ये कुछ नहीं है, किसी न किसी दिव्य गुण के प्रकाश का अभाव है। पवित्रता के दिव्य गुण का लाइट का अभाव से काम रूपी अंधकार आ जाता है। ये पहला दिव्य गुण पवित्रता का। दूसरा दिव्य गुण, हमें क्रोध आता है। क्रोध क्यों आता है? शीतलता के दिव्य गुण का अभाव से क्रोध आता है। तो शीतलता के दिव्य गुण को भी जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। भाई लोभ क्या चीज है? संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव है लोभ। तो उस संतुष्टता के गुण को धारण करने का प्रसाद करते रहे। मोह, सबके साथ समान प्यार होना, ये दिव्य गुण है, क्योंकि प्यार के सागर के हम बच्चे हैं। सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार हमारा होना, ये तो हमारा नेचर होना जरूरी है। लेकिन किसी एक के साथ विशेष स्नेह होना, इसको मोह कहते हैं। और अहंकार, ये विकार, नम्रता के दिव्य गुण का अभाव है। तो कहने का मतलब है, इन पांच गुणों को भी जीवन में धारण करते रहेंगे साथ साथ, तो संस्कारों का दिव्यीकरण बहुत तेजी से होगा, शुद्धिकरण बहुत तेजी से होगा, और बहुत अच्छी तरह से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना। फरिश्ता माना एकदम दिव्य गुणों से संपन्न, दिव्यता से संपन्न, दिव्य संस्कारों से संपन्न, ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें अनुभव करना है। इसलिए संस्कारों का शुद्धिकरण समय के पहले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा हमें बेहद सेवा करने का गोल्डन चांस भी देना चाहते हैं। इसलिए समय के पहले अगर हम संस्कारों का शुद्धिकरण करते हैं, तो वो बेहद सेवा का चांस, मनसा सेवा का चांस हमें मिलेगा, और हम बेहद की कमाई करने में सफल होंगे। इसलिए इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। अभी हम 6:30 से 7 बजे तक बहुत ही पावरफुल योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो ओम शांति।